संख्या प्रकारक बोध का विचार संपन्न हो चुका है, अब जो है काल प्रकारक बोध का विचार यहाँ पर प्रारंभ होगा, क्योंकि चौथा अर्थ जो है तिंग का यही है काल। तो कालस्तु व्यापारे विशेषणम्, काल किसका विशेषण होता है तो व्यापार का विशेषण होता है, व्यापार मतलब क्रिया, क्रिया का विशेषण होता है। अब जैसे वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भविष्यत कालिक क्रिया, क्रिया के बदले व्यापार का प्रयोग व्याकरण लोग करते हैं, तो होगा वर्तमान कालिको व्यापार, भूतकालिको व्यापार, भविष्यत कालिको व्यापार। तो आपने देखा कि वर्तमान काल का, भूत काल का, भविष्य काल का यह विशेषण है, और लास्ट में व्यापार कहते हैं वह इसका विशेष है। तो कहते हैं कि कालस्तु व्यापारे विशेषणम्, काल जो है तीनों प्रकार का वह व्यापार में विशेषण होता है। कहा कि इसमें कुछ प्रमाण है, तो कहा कि प्रमाण है तथा ही वर्तमान लट इत्यत्र अधिकारात धातु इति लब्धम, ताकि वर्तमान लट या जो पाणिनि का सूत्र है इसमें धातु का अधिकार होता है, धातु की अनुवृत्ति आती है, और फिर अर्थ होता है कि धातु में वर्तमानत्व रहने पर, मान क्रिया में वर्तमानत्व रहने पर लट लकार का विधान होता है। तो इस तरह से इस सूत्र के आधार पर ये प्रतीत होता है कि व्यापार में काल विशेषण बनता है। आगे लिखते हैं तच्च धात्वर्थम वदत प्राधान्यात व्यापारमेव ग्राह्यति इति तत्रैव तदन्वयः। इस तरह से वह जो काल है वह काल धात्वर्थम वदत, माने धातु अर्थ को बताते हुए प्राधान्यात प्रधान रूप से व्यापारम एव ग्राह्यति, व्यापार अर्थ का ही ग्रहण कराता है, और तत्रैव तदन्वयः, और उसी में उसका अन्वय होता है। याद कीजिए मैंने कहा था जिसमें अन्वय होता है वह विशेष है, जिसका अन्वय होता है वह विशेषण है। आगे फिर लिखते हैं न च संख्यावत कर्तिकर्मणोः एव अन्वयः संख्यः, माने संख्यावत ये जो जहाँ पर भी न च रहे ना, न च से बाकी की शुरुआत हो, तो उस न च को न पकड़ करके लास्ट में जो क्रियापद होता है उसमें जोर देना चाहिए। जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या है संख्या, उसमें न को जोर दीजिए, तो अब क्या होगा कि संख्यावत कर्तिकर्मणोः एव अन्वयः न संख्या, संख्यावत माने संख्या की तरह कर्ता और कर्म में ही जो है काल का अन्वय की शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्या दोष हो जाएगा, तो लिखते हैं कि अतीत भावना के कर्तरी पचति इति आपत्ते है, ताकि जैसे संख्या का अन्वय कर्ता और कर्म में करते हैं, उसी तरह से अगर काल का अन्वय भी जो है कर्ता और कर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वर्तमान कालिक कर्ता रहने पर वर्तमान का प्रयोग होगा, भूतकालिक कर्ता रहने पर भूतकाल का प्रयोग होगा, भविष्यत कालिक कर्ता रहने पर भविष्यत काल का प्रयोग होगा। जबकि होता ऐसा नहीं है, होता क्या है कि वर्तमान कालिक क्रिया रहने पर वर्तमान का प्रयोग होता है, भूतकालिक क्रिया रहने पर भूतकाल का प्रयोग होता है, भविष्यत कालिक क्रिया रहने पर भविष्यत काल का प्रयोग होता है। जैसे देवदत्तः तंडुलम पचति, ये पचति प्रयोग कब होता है, जब वर्तमान कालिक पाक क्रिया रहती है। देवदत्तः तंडुलम अपचत, ये प्रयोग कब होता है, जब भूतकालिक पाक क्रिया होती है। और देवदत्तः ओदनम पक्ष्यति, ये प्रयोग कब होता है, जब भविष्यत कालिक पाक क्रिया होती है। अब क्या हो, लेकिन ऐसा कब होता है, जब हम काल का अन्वय करते हैं क्रिया में, काल विशेषण होता है और क्रिया विशेष होती है, तो इस तरह से प्रयोग होता है और यही सिद्धांत है। लेकिन अगर आप इस तरह की शंका करेंगे कि जैसे संख्या का अन्वय कर्ता में होता है कर्म में होता है, उसी तरह से काल का भी जो है कर्ता और कर्म में अन्वय होना चाहिए, तो क्या आपत्ति आएगी कि फिर न कर्ता के आधार पर होने लगेगा, वर्तमान कालिक कर्ता रहेगा तो पचति, भूतकालिक कर्ता रहेगा तो अपचत या अपाक्षित लुंग लकार में पच धातु का अपाक्षित प्रयोग होता है, और भविष्यत कालिक करता रहेगा तो जाकर के पक्षति प्रयोग होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। वही कहते हैं अतीत भावना के, भावना मतलब क्रिया व्यापार, तो अतीत भावना जहाँ रहेगी, अतीत मतलब भूतकाल, तो भूतकालिक जहाँ पर क्रिया रहेगी वहाँ पर भी जो है कर्तरी पचति किति आपत्ते है। तो क्रिया अगर भूतकालिक हो लेकिन कर्ता अगर वर्तमान काल में विद्यमान है तो पचति की आपत्ति होगी, माने पचति प्रयोग होने लगेगा, क्योंकि कर्ता वर्तमान है ना। भले क्रिया जो है भूतकालिक है लेकिन जब हम कर्ता में काल का अन्वय करेंगे तो कर्ता के हिसाब से पचति पक्षति अपाक्षित का प्रयोग होगा। वही कह रहे हैं कि अतीत भावना के, माने क्रिया जब अतीत होगी माने भूतकालिक क्रिया रहेगी, किंतु कर्तरी कर्ता अगर वर्तमान काल में रहेगा तो पचति इति आपत्ति, पचति की आपत्ति होने लगेगी। जबकि होना क्या चाहिए यहाँ पर, अपाक्षित प्रयोग होना चाहिए या अपचत प्रयोग होना चाहिए। वही कहता है अपाक्षित इति अनापत्ति है, मैंने कहा था ना कि आपत्ति माने होना, अनापत्ति माने नहीं होना, तो पचत इति आपत्ति है माने पचति प्रयोग होने लगेगा, अपाक्षित इति अनापत्ति है माने अपाक्षित प्रयोग यह नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं पाक अनारंभ दशायाम, कि पाक क्रिया का जब जिस समय में आरंभ नहीं हुआ है उस समय में कर्तृ सत्व, और अगर कर्ता जो है पाचक जो है अगर सत्व है उसका माने वह विद्यमान है तो पक्षति इति अनापत्ति है, तो उस समय में पक्षति प्रयोग होना चाहिए ना, क्योंकि पाक क्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, भले ही पाचक वहां पर विद्यमान है, क्या प्रयोग होना चाहिए, पक्षति, क्योंकि भविष्य में पाक क्रिया होगी अभी आरंभ नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह से पक्षति प्रयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पर कर्तृ सत्व है, कर्ता जो है वह वर्तमान काल में वहाँ विद्यमान है, तो पक्षति इति अनापत्ति है, पक्षति प्रयोग की अनापत्ति होगी माने पक्षति का प्रयोग नहीं हो पाएगा। इस तरह से इन्होंने दोष दिया कि अगर हम संख्या का कर्ता कर्म में अन्वय करेंगे तो इस तरह से दोष होगा कि जहाँ पर अतीत भावना रहेगी, भूतकालिक क्रिया रहेगी, वहाँ पर भी जो है वर्तमान काल का प्रयोग होने लगेगा पक्षति, और अपाक्षित जो प्रयोग होना चाहिए भूतकाल वाला वो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही पाक अनारंभ दशायाम, पाक क्रिया का जब आरंभ नहीं हुआ है और कर्तृ सत्व अगर कर्ता वहाँ पर विद्यमान है तो भी पक्षति प्रयोग की आपत्ति होने लगेगी, जबकि पक्षति प्रयोग वहाँ पर नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, पक्षति इति अनापत्ति, पक्षति का प्रयोग नहीं हो पाएगा जबकि पक्षति प्रयोग होना चाहिए। फिर कहते हैं कि ऐसा है कि कर्ता कर्म में हम काल का नहीं अन्वय करके ऐसा करते हैं फल में अन्वय कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत है। हम सिद्धांत क्या है कि काल का अन्वय व्यापार में होता है, उसके बदले कोई शंका कर रहा है कि व्यापार में हम अन्वय नहीं करके संख्या का जो काल का अन्वय जो है फल में कर लेते हैं, तो उस पर आपत्ति देते हैं, ताकि नापि फले तद अन्वय, माने फल में भी काल का अन्वय ठीक नहीं है, क्योंकि फल अनुत्पत्ति दशायाम, माने जिस समय में जिस दशा माने अवस्था, तो जिस अवस्था में फल की अनुत्पत्ति है, फल की उत्पत्ति नहीं हो पाई है, जैसे पचती है ना, तो पच धातु का फल क्या है, विकलित्ति, तो विकलित्ति रूप फल जो है अगर अनुत्पन्न है, उत्पन्न नहीं हुआ है उस अवस्था में, और व्यापार सत्व और अगर पाक व्यापार हो रहा है उस समय में पचति इति अनापत्ति है, उस समय में पचति का प्रयोग होना चाहिए लेकिन वह प्रयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, फल में काल का अन्वय किया, तो अब क्या होगा कि वर्तमान कालिक अगर विकलित्ति फल है तो पचति का प्रयोग होगा, यहाँ पर तो वर्तमान कालिक फल है नहीं, फल की अनुत्पत्ति दशा है, तो पचति का प्रयोग नहीं हो पाएगा। ऐसे ही पक्षति इति आपत्तेश्च, और चूंकि विकलित रूपी फल जो है भविष्य में होने वाला है उसके आधार पर पक्षति का प्रयोग होने लगेगा, जबकि यह प्रयोग गलत है। और अगर हम व्यापार में अन्वय करते हैं तो यह प्रयोग होगा, क्योंकि व्यापार जो है अगर अभी हो रहा है पाक व्यापार तो पचति का प्रयोग सही है, अगर व्यापार भविष्य में भविष्यत काल में होने वाला है तो पक्षति प्रयोग सही है, लेकिन अगर फल में अन्वय करते हैं तो फल की अनुत्पत्ति दशा में पचति प्रयोग होने लगेगा और पक्षति का प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इन्होंने खंडन कर दिया कि न हम काल का कर्ता कर्म में अन्वय कर सकते हैं और न ही काल का अन्वय हम फल में कर सकते हैं। अब आगे कहते हैं कि न च आम बात यदि कृत कलेवरस्य उत्थानानुकूल यत्न सत्वात उत्तिष्ठति इति प्रयोगापत्ति। यहाँ पर इन्होंने आपत्ति और अनापत्ति का जो है ना उदाहरण दिया था कि इस तरह के प्रयोग की आपत्ति होगी और इस तरह प्रयोग की अनापत्ति होगी। उसमें कोई कह रहे हैं कि ऐसा है कि अगर हम फल में अन्वय करेंगे तो आपको इस तरह की आपत्ति देनी चाहिए, किस तरह की, ताकि आम बात जदीकृत कलेवर, आम बात जो है ना यह रोग है, बात रोग है जिसको हम गठिया बीमारी कहते हैं, तो आम बात जब रोग हो जाता है, गठिया रोग पकड़ लेता है, तो क्या होता है, जदीकृत कलेवर होता है। कलेवर कहते हैं शरीर को, आ जदीकृत कलेवर माने हुआ शरीर जो है ना जड़ की तरह हो जाता है, उसमें जो है ना चेष्टा नहीं रह पाती है। तो आम बात जदीकृत कलेवर माने आम बात नाम के रोग से जिसका कलेवर जदीकृत हो गया है, जड़ बन गया है, पत्थर की तरह हो गया है, निर्जीव की तरह हो गया है, उसमें उत्थानानुकूल यत्न सत्वात, मान लीजिए कोई आम बात जदीकृत कलेवर वाला व्यक्ति है जिसको कि गठिया रोग भयंकर हो गया है, वह उत्थानानुकूल यत्न करेगा माने उठने के, उत्थान माने उठना, तो उठने के अनुकूल जो है ना यत्न करेगा, प्रयास करेगा, परंतु वह उठ नहीं पाएगा। लेकिन उस स्थिति में जो है ना उत्तिष्ठति प्रयोग जो है वह होने लगेगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा गौर करिए, उत्तिष्ठति प्रयोग कब होना चाहिए, जब कोई उठेगा तब, उठ रहा होता है ना, उठता है उस समय में उत्तिष्ठति प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि वह जो रोगी व्यक्ति है वह उठना चाहता है, उठने के लिए प्रयास करता है, किंतु उठ नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उत्तिष्ठति प्रयोग की आपत्ति होने लगेगी जो अगर हम फल में अन्वय करते हैं, क्योंकि उत्तिष्ठति में जो उत्पूर्वक स्था धातु है उसका फल क्या होता है, उत्थान। तो उत्थानानुकूल यत्न चूंकि वह कर रहा है रोगी, उसके आधार पर माने फल के आधार, वर्तमान कालिक उत्थान अनुकूल यत्न के आधार पर यहाँ पर उत्तिष्ठति प्रयोग होने लगेगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो वही कहा कि इस तरह की भी आपत्ति दी जा सकती है कि अगर हम फल में काल का अन्वय करेंगे तो जो उठना चाहता है किंतु उठ नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में भी उत्तिष्ठति का प्रयोग होने लगेगा। कहा कि नहीं, इस तरह की हम आप प्रयोगापत्ति नहीं दे सकते, क्योंकि तो परयत्नस्य अज्ञानात अप्रयोगात। कहा कि परयत्न माने दूसरे में रहने वाला जो यत्न है वो उसका अज्ञानात, उसका हमें ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए अप्रयोगात, इसलिए उत्तिष्ठति प्रयोग जो है यहाँ पर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब मान लीजिए कोई जो गठिया रोगी है वह उठना चाहता है और उठ नहीं पा रहा है, तो वह जो उठने के लिए यत्न करता है वह तो दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि शरीर में जब चेष्टा होगी, शरीर जब हिलेगा डुलेगा तभी जो है हम समझेंगे कि ये उठना चाहता है, उठ नहीं पा रहा है ना, लेकिन उसमें तो कोई चेष्टा होगी ही नहीं। तो इसलिए परयत्न से अज्ञानात, दूसरे में उस रोगी में जो उत्थानानुकूल यत्न है उसका चूंकि ज्ञान नहीं रहेगा, इसलिए अप्रयोग, इसलिए उत्तिष्ठति के का प्रयोग जो है वहां पर नहीं हो पाएगा। फिर इस पर पूर्व पक्षी कहते हैं, जिसने वो शंका के वो आपत्ति दिया था कि आम बात जदीकृत कलेवर वाला जो रोगी है वह उठना चाह रहा है, उठने के लिए जब यत्न कर रहा है उस समय में उत्तिष्ठति प्रयोग की आपत्ति हो जाएगी, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था, वो फिर से अपना दूसरा तर्क दे रहा है। वो कह रहा है कि किंचित चेष्टादिना तद अवगत हो चाह, कहा कि ऐसा है कि कुछ न कुछ तो चेष्टा होगी, नहीं कुछ तो आंख तो ऊपर नीचे होगा, ये दिख जाएगा, अनुमान किया जाएगा उसकी चेष्टा को देख करके कि ये उठना तो बेचारा चाह रहा है किंतु उठ नहीं पा रहा है। तो इस तरह से अगर तत् अवगत हो, उसकी अगर अवगति हो जाएगी, माने उत्थान रूप फल की अगर अवगति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा चेष्टा के आधार पर, तो फिर अयम उत्तिष्ठति यह प्रयोग हो सकता है कि यह उठना चाहता है, उठता है। शक्ति अभावात फलम तो न जायते, या उठता है किंतु शक्ति के अभाव में उत्थान रूप जो फल है वह नहीं हो पा रहा है, इति लोक प्रतीते है। इस तरह से लोक में, लोक व्यवहार में प्रतीति होती है, माने अनुभव होता है। तो इस तत्वा, तो इस तरह की फिर आपत्ति हम दे सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हमें ये पता लग जाए कि ये उठने का यत्न कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रयोग कर सकते हैं कि अयम उत्तिष्ठति किंतु शक्ति अभावात उत्थान रूप फलम न जायते। लेकिन अगर इसका ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर अयम उत्तिष्ठति का प्रयोग नहीं होगा, यही यहाँ पर आशय है। फिर आगे कहते हैं, उपसंहार कर रहे हैं कि एवं च तिंगर्थो विशेषणम एव, इस तरह से तिंग का अर्थ जो है कर्ता, कर्म, संख्या और काल, ये चारों अर्थ विशेषणम एव, माने ये चारों विशेषण ही होते हैं। भावना एव प्रधानम, और भावना जो है वह प्रधान हो, भावना ही जो है वह प्रधान होता है। भावना माने व्यापार, यही कहा ना, फले प्रधानम व्यापार, माने व्यापार जो है वह प्रधान होता है, माने विशेष्य होता है। अब यहाँ पर तिंगर्थ की बात जो है खत्म हो गई है, कर्त, कर्म, संख्या, काल के विशेष विशेषण भाव की बात कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनल जो है फले प्रधानम व्यापार, ये जो कारिका में कहा गया उसके ऊपर विचार किया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण विचार जो है यही है। तो इसलिए इसको हम जो है अगले पाठ में इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं।